ఆచార్యాధికారి కృష్ణాయ కృష్ణవక్షాయ
सम्मान मिलेगा, रुपया पैसा मिलेगा और संसार की और चीजें जो दूसरों के लिए बड़ी दुर्लभ हैं वो अपने आप। उस समय में धन में, रुपये में, पैसे में, प्रतिष्ठा में यदि गए तो जहन्नम में चले गए। उस समय इनसे अनाशक्त रह करके नाक के सिर में वो चलेगा सर। जब प्रारंभ भक्ति होगी थोड़ा सा यदि सुंदर कीर्तन करने लगे, मधुर कीर्तन अथवा भाषण देने की कला आ गई अथवा और सब बातें कुछ हो गई, थोड़ी सी भक्ति हो गई, नाम में रुचि होने लग गई तो प्रतिष्ठा अपने आप बहने लगी दूसरे चरणों में। बहुत लोग सम्मान करने लगे, उस समय में तरह तरह के फल सब आएंगे, उस समय मुक्ति भी हो सकता है कि हाथ जोड़ करके पड़ी हो जाए और योग सिद्धियां इत्यादि जो होती हैं वो भी अपने आप सब वहां पर उपस्थित हो जाएंगे उस भक्त के, विशेष करके जिसको आसक्ति होकर के और भावावस्था में वो आने वाली है उसकी भक्ति, उन लोगों के लिए उस समय में चारों तरफ से प्रतिष्ठा मिलने लगती है, धन इत्यादि होने आने लगता है। उस समय में चेक करना उनको जरा दूर रखना बहुत, लोग कहेंगे अरे ये भक्ति का फल है जिनको इतना सम्मान रुपया पैसा प्रतिष्ठा ये सब मिल रहा है। और वो देखेगा जी ये तो मरवी महाबंधन और भक्ति को उच्छेद करने वाली चीज है, इसलिए उसमें बहुत सावधान से साधक को रहना पड़ेगा, अन्यथा वो आसक्ति वाला फिर नीचे उतर जाए। इसलिए ये भक्ति अब आ रही है ना, अब भावावस्था में आने वाली है, उस भाव भक्ति का चैतन्य महाप्रभु जी ने लक्षण दिया, नयनम गलता सुधार पतनम गया कुल कर निचितम बपुह कदा तम नाम ग्रहणे भविष्य। ऐसे कब मेरी अवस्था आएगी, स्वाभाविक रूप से भगवान का नाम करते 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 कीर्तन करते 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 क्या होगा, हृदय द्रवित हो जाएगा। हृदय द्रवित होने का पहला लक्षण है आंखों से आंसू अपने आप स्वाभाविक रूप से कर रहे, कहीं ऐसा ना हो कि संसारिक भावनाओं के कारण उस समय में याद आने से कहीं आंसू ना आ जाए, ऐसा नहीं है। या स्वभाव से ही वैसा पिछल स्वभाव है, अर्थात जैसे कि हम चलते हैं बरसात के दिनों में पिछल जाते हैं, मिट्टी गीली हो जाती है चीकी, ऐसे स्वभाव से पिछल हैं हम। सुन करके भागवत पाठ में बकरे की भूले हुए कहीं बकरा खो गया, वो ऐसे ऐसे पाठक कर रहे हैं, वो देख करके रोने लगा कि हमारा ये बकरा कहीं गुम हो गया, हमारा बकरे की दाढ़ी हमारे बकरे की भी दाढ़ी ऐसे ही थी, वो भी ऐसे ऐसे करता तो रोने लग गया। भक्ति में ये सब चीजें भक्ति विरोधी और आभास है, इन सब को दूर करके जिसमें यह करता है ना, इसलिए श्रीमद् भागवत में तदस्प सार हृदय पतेदम जो दृश्यमाणे हरिनाम धे न विक्रिय विक्रिय भात जदो विकारो नेत्रे जलम भगवान के लीला कथाओं का स्मरण ऐसे होने लगेगा उनसे रहा नहीं, उसका हृदय द्रवित हो जाता। यदि हृदय द्रवित नहीं हो तो अष्ट शक्ति जी का आने पर भी वो बेकार है, इसलिए हृदय में उसकी भावना है। हृदय यदि द्रवित हो गया तब तो सब ठीक, और हृदय द्रवित नहीं हुआ और आंखों में आंसू भी आ रहे हैं तो उससे कुछ लाभ नहीं। इसलिए कहते हैं महाप्रभु जी स्वयं कह रहे हैं जब भजन जब ये परिपक्व होकर के भाव दशा आती है उसमें ऊपर से वो भाव आता है, वो जीव के हृदय का अपना नहीं है, उस समय में भगवान के नित्य सिद्ध परिकर हैं, वहां से वो भाव अनुगत करने से उनका वो भाव यहां पर होता है। उस समय में चित्त द्रवित, उस समय भगवान का नाम रूप गुण लीला जैसे प्रकट लीला में हुई थी वो उसके हृदय में आदि रूप होने लगती है, स्फुरित होने लगती है, तब ये अपने आप होता है। इसके संबंध में हम आगे तक सबका वर्णन किए हैं। ये प्रेम की पहली अवस्था है, प्रेम का आभास। यदि प्रेम सूर्य है तो सूर्य का जैसे आभास सूर्य के नहीं उदित होने पर भी अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे प्रेम की यह पहली स्थिति है, इसी को कहते हैं भाव। किंतु यह भाव इस यहाँ का नहीं है, कोई जगत का चीज मानसिक भाव विकार नहीं है, इसको समझने में ये नित्य मुक्त जो भगवान के नित्य सिद्ध परिकर है उनके हृदय में ये माने लागनी और संबित का यह मिला हुआ सार, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। जब अपने आप वो होगा तब इसकी कल्पना कुछ हो सकती है, उसको व्यक्त किया जा सकता। भजन भक्ति के इसी श्लोक तक पहुंचे हैं जिनको ये भाव भक्त गोस्वामी सिंधु में उसके लक्षण दिए गए और उसी संसार में भक्त विनोद ठाकुर जी ने श्रीमद् भागवत के भी श्लोकों का एक माला ग्रंथ की है। उसके एक एक श्लोक एक एक मनिया है, उसमें लक्षण दिख रहा है जिसको भाव हो जाता है। उसके लक्षण क्या है पहले हम लोग उसको पार कराएं। शांति अगर बताओ विरक्ति मानसिकता आशा अंग समुद कंधा नाम गाने सदर आसक्ति शांति अव्यक्त काल उत्पन्न चित्त चंचल या क्षुब्ध होने का कारण भी उपस्थित होने पर चित्त चंचल होने का या क्षुब्ध होने का कारण उपस्थित होने पर भी तो एकदम शांत बनेगा। शांति अव्यक्त काल उत्पन्न वृद्धा वाक्यालाप इत्यादि कुछ उनका समय एक मिनट भी बर्बाद नहीं। कृष्ण की कथाओं के अतिरिक्त और कहीं भी कोई भी बातें नहीं कर। अभी कृष्ण की कथा में आंखों से आंसू आ रहे हैं और थोड़ी देर के बाद में तंडा वितंडा ये सब कर लिए, झगड़ा कर लिया, एक छोटी सी बात के लिए लड़ाई कर लिया मान अभिमान कर। ये उसका लक्षण नहीं है, छोटी सी कोई भी बात आ गई और इधर तो खूब लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे और इनमें गडमग हो रहे थे और थोड़ी सी कोई बात आ गई, थोड़ी सी कोई विरोधिता हो गई, बस एकदम बैलेंस छोड़ करके लड़ाई झगड़ा कर लाठी डंडे को उतर ऐसा। उनका एक मिनट का सगड़ा समय भी कृष्ण की कथाओं इतर कथाओं में उनका व्यतीत कोई काल भी उनका नष्ट सब समय उसी में लगा। अव्यक्त काल पर विरक्ति भगवान से इतर वस्तुओं के प्रति उनकी विरक्ति हो और भगवान के चरण में विशेष रूप से अनुरक्ति हो। विरक्ति मान शून्यता सारा जगत सब कुछ छोड़ देने पर भी मान नहीं छोड़ पाते। भागवत भी पढ़ लेते हैं हम लोग पूरा सब पढ़ लेते हैं किंतु मान और क्रोध ये छूटता है। जगत में तो क्रोध है मान नहीं है, मान तो उस जगत में है भावावस्था के बाद प्रेम के बाद। अभी जो हम लोगों का जो कुछ मान भी जैसा ये क्रोध का ही विकृत है। तो ये मान शून्यता आशा बंधक कृष्ण जरूर मिलेंगे अवश्य मिलेंगे ही आशा बंधक समुद्र कंठा कब मिलेंगे कब कृष्ण मिलेंगे और किसी चीज के लिए उत्कंठा नहीं है बस कब वो मिलेंगे इसी की उत्कंठा है। नाम गाने सदा रुचि नाम गान में सब समय नाम कीर्तन में सब समय रुचि है। नाम कीर्तन किसको कहते हैं पहले इसको समझ लेना। ताल छंद स्वर राग से गाना ही नाम नहीं है कीर्तन। कीर्तन किसके लिए कहा गया सुखदेव गोस्वामी कीर्तन है वो क्या श्लोक परीक्षित अभवत
परीक्षित
श्रवण बैयासखी कीर्तन प्रहलाद स्मरण में व्यास जी या सुखदेव गोस्वामी ये सब लोग कीर्तन में है। नारद जी ये सब कीर्तन में है। जीवा का स्पंद होना ही भगवान के नाम का रूप का गुण का लीला का ये सब जीवाओं का जीवा का स्पंदन मात्र कीर्तन भवती और अच्छी तरह से हो तो वो संकीर्तन हो
जाए।
इसलिए कहते हैं नाम का निष्ठा रुचि है और आसक्ति तद्वसत स्थल
गुणाख्यान
गुणाख्यान उनकी गुणों के आख्यान में वर्णन करने एकदम तन्मय हो तदात्म हो जाए। शरीर की इस उपलब्धि में आ, और उसकी प्रीति होती है भगवान के प्रति बस्ती स्वरूप नंदगांव बरसाना राधा कुंड श्याम कुंड ये सब स्थान है वृंदावन में सब चौरासी को ब्रजमंडल में देख उसमें भी तात्पर्य है सभी तो कर दिया जाता है तो भी उसमें भी तात्पर्य है उन सब में राधा कुंड चरण सीमा जहाँ पर प्रेम मुक्तिमान रूप में खड़ा है जहाँ कृष्ण को भी लुप्त कर दिया है ये उनके बस्ती स्थलों में थी ये सब भाव के प्रेम के अंकुर हैं प्रेम के अंकुर होने पर होते हैं प्रेम का अंकुर क्या है प्रेम यदि वृक्ष इत्यादि है तो उसका अंकुर होता है भाव ये भाव के लिए अच्छा जब ये भाव हो जाता है तो और सबका वर्णन हमने किया उसमें आशा हो चरण रेणी उषा में उनकी हमने व्याख्या की यहाँ पर कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी इसको उदाहरण स्वरूप प्रमाण देते हुए ये कह रहे हैं जब ये भाव उत्पन्न हो जाता है तब ब्रह्मा शंकर सुखदेव गोस्वामी नारद जी ये भी ललच जाते हैं उस भाव को पाने के लिए इनके अंदर में भी होता है कि कैसे इन भावों को हम पाए ब्रह्मांड को के लिए क्षोभकारी बन जाता है क्षण में कल्प और कल्प में क्षण ये भावना आती है इसका मतलब क्या है क्षण में एक क्षण में कल्पत्व को ये कल्प समान इतना लंबा बीतता नहीं एक क्षण में कृष्ण के विरह में और एक क्षण का काल भी कल्प और कल्प का समय भी कृष्ण के साथ में व्यतीत होने पर एक मालूम होता है एक क्षण हो ऐसे उसमें इसके भाव क्या भाव इतना सहज नहीं है थोड़ा सा ऐसा सा शरीर हो गया आंख से आंसू आ गए भाव हो गया ऐसा नहीं कृष्ण का भाव और रामचंद्र जी ने थोड़ा सा यही वैशिष्ट्य देखा जाए राम की इतनी करुण लीलाएं हैं उसका श्रवण करने मात्र से ही हृदय पुलकित हो जाता है आंखों से आंसू थरने लगते हैं और इसके बाद में फिर सूख जाते हैं देशांतर में नहीं चले जा सकते और कृष्ण के लिए यदि एक बार आंसू आया तो जन्म जन्मांतर भी वो सूखेगा नहीं आंखें सब समय गिरी रहेगी हृदय पीटता रहेगा यदि भाव आए भाव के साथ में गिर इसी भाव को ये लक्षण ये दे रहे हैं ये गोपियों का भाव देख करके ब्रह्मा इत्यादि सबके मन में क्षोभ ब्रह्मांड भी क्षुब्ध हो जाता है ब्रह्मा क्लियर हो गए तो कुछ नहीं सब क्षुब्ध हो जाते हैं ऐसे उद्धव जी कह रहे हैं उनके इस भावों को देख करके जब उन्होंने गोपियों के इन भावों को देखा क्या देखा भ्रमर जी भावों को सुना उठो तो उन्होंने देखा नहीं भ्रमर को देखा और देख करके प्रलाप संलाप
प्रजल
प्रजल जल पद इत्यादि बहुत तरह के उद्धव ने जीवन में कभी नहीं देखा था न कभी सुना था गोपियों में ऐसे उच्चतम भाव ने सुना तो था कुछ किंतु धारणा नहीं थी और यहां पर जब आया तो उन्होंने देखा और गोपियां सबके नौ भाव उन्नत है धारणा नहीं कर सके इसलिए उन्होंने कहा कि मैं वृंदावन में आशा महो चरण रेणी दुषा उन गोपियों की चरण धूलि को प्राप्त करने के लिए मैं घास बन जाऊं तुम लता बन जाऊं फिर सोचा ने मैं इसके लिए योग्य नहीं इसके लिए भी योग्य नहीं तिर बन जाऊं इसलिए बंदे नंद ब्रज इसी नाम महादेव बहुत दूर से उसकी एक धूली क्यों होने पर किस लिए बहुत अच्छे उनको ये भाव लगे लोभ कुछ उत्पन्न हो गया इसलिए किंतु वह लोभ उनका पूर्ण हुआ कि नहीं ये तो कहीं दिखता नहीं कहीं भी वर्णन कहीं भी वर्णन नहीं हाँ कुसुम सरोवर में उसके पास में उद्भव कुंड में के पास में गोपी
के पास
और गोपियां जब वहां पर परीक्षित महाराज और दक्षिणनाथ जी सब गोपियों को लेकर के वहां पर जब कीर्तन नृत्य किया तो उस झाड़ी में से निकल करके आए यहाँ तक तो है, अप्रेम में झूमने लगे। प्रेम में झूमने लगे यहाँ तक तो देखा जाए, किंतु ब्रज का कोई बन गए हो, ब्रज के एक गोपी या गोपियों की किंकरी बन गए हो, अथवा एक पुष्प की लता बन गए हो, और कृष्ण ने अपने हाथों से उसका पुष्प चयन किया, यह उनको सौभाग्य मिला कि नहीं, ये तो बहुत गुण। इसलिए वो कह रहे हैं एता परम तनुज दो गोविंद एव अखिलात्मे रूढ़ भाव वांछन जल भवियो मुनियो वयन च किं ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा। इसको भक्त विनोद ठाकुर जी इसको लेकर के और बता रहे हैं, कहते हैं अहो ये ब्रजभूमि धन्य है। ब्रजभूमि किस लिए धन्य है कि यहां गोपियों जैसे ये कृष्ण के अखंड प्रियतमान गोपियों, इन गोपियों के लिए ये ब्रज धन्य है। मनुष्य का कर्म शरीर धारण करना तभी सार्थक होगा यदि वृंदावन में वो जन्मे या वृंदावन के ये भाव हों। कैसे भाव हों? गोप बधुओं के जैसे भाव। गोप की बधुएं कैसी थी? गोविंद एव अखिलात्मनि रूढ़ भाव। ये जो गोविंद हैं, गोविंद माने क्या? गोविंद गोमाएं साधारण स्वर से इंद्रियां, इंद्रियों का आनंद देने वाले। क्यों? भगवान की कथाओं से हमारी इंद्रियां भी और इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। गो माने देव, गो माने गाभी, गो माने गो वत्स, गो माने गोपियां, गो वत्स, गो सखा इत्यादि जितने हैं सब इसके अंदर सबको आनंद देने वाले हैं। इस नाम को इंद्र जी ने अभिषेक करके और कृष्ण के लिए ये दिया। ये जी गोविंद कौन है? गोविंद महाकि पुरुषम तमाम भजन आनंद चिन्हमय रस प्रतिभा निज रूप तैयार करा गोलो एवं अखिलात्म भूतो गोविंद महाकि पुरुषम तमाम आनंद चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प अपेक्षा लक्ष्मी सहस्र शत ब्रह्म शब्दमान गोविंद अरविंद दलायताक्षं बरहावतंस अशिताम्बुज सुंदरं कंदर्प कोटि रमणीय विशेष शोभनं गोविंद महापुरुषं आलोल चंद्र प्रसत संभाल्य वंशी रत्नांगतम प्रणयते कला प्रयास श्यामं त्रिभंग ललितम तत्प्रभासम। ये साधारण नहीं है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, ये तो बहुत नीचे की बात। देखो यहां तक आ गए, ये गोविंद कैसे? रामादि मूर्तेषु कला में प्रतिष्ठा, इनके कला अंश के अंश के अंश, ये सब कलाएं हैं जो राम इत्यादि के रूपों में ये परावस्था है। राम भी उनके लिए भी ये आशा है। ये कौन कर हम लोगों के गुरु के संप्रदाय के जो आदि आचार्य हैं गुरु
ब्रह्मा जी,
वो ब्रह्मा जी का ब्रह्म संहिता है। इसलिए गोविंद ये साधारण किंतु ऐसे में जो सब कारणों के कारण है, अनादि है, क्या ईश्वर परमा कृष्ण अनादि आदि गोविंद, ये अनादि आदि गोविंद है। किंतु इनमें लोगों की साधारण भावना होगी, ये शांत भाव से संरक्षण होगा। अरे ये तो ब्रह्मांड के संचालक हैं, ब्रह्मा और शंकर विष्णु इत्यादि के भी सब अवतारों के भी मूल है, इसलिए उनके प्रति ऐसे शांत भाव से संतापा है। और दास्य वाले उनको देखेंगे प्रभु के हाथ जोड़ करके वंदना है। ब्रह्मा शंकर अधिकृत दास है, हनुमान इत्यादि प्रेम प्राप्त दास है, परिकरों में से है, और उद्धव इत्यादि भी परिकरों में से है। परिकर भी बहुत प्रकार, कोई लाल्य है, कोई बाल्य है, ये सब अधिकृत दास है। सांब अनिरुद्ध इत्यादि ये लाल्य है, और दारू और उद्धव इत्यादि ये सब लोग भी दूसरे तरह के हैं, किंतु सब दास उनके हैं। हाथ जोड़ करके उस सुख में दास रूप में इनकी प्रार्थना करते, इनके कृपा भूभंगी के लिए। और सखा लोग कभी कभी अर्जुन इत्यादि को प्रभु के रूप में देखते हैं, ताकि कि हमने जो सखा किया ये शब्द अपना लौटाते हैं, आप हमें क्षमा कर। ब्रज के सखा लोग कुछ हैं जो कलबहिया देकर उनके साथ में, जो सोदा मैया इत्यादि जिनका लालन पालन करती है, किंतु ब्रज की जो गोपुए हैं इनका भाव कुछ विचित्र है। इन लोगों से बहुत कुछ ऊपर है, वो कैसा है? इन लोगों का भाव रूढ़ नहीं हुआ, इनका भाव कहां कर गया? प्रेम स्नेह मान
प्रणय
राग
अनुराग
तक दासों का सखाओं का गया। जो दास है उनका मान भी नहीं जाएगा, उनका प्रेम तक जाएगा, बस यह तक समाप्त हुआ दासों का। शांत वालों का कहां तक जाएगा? प्रेम के नीचे स्थिति तक जाएगा। उनके प्रेम में लहरें नहीं, तरंगे नहीं है, उनका प्रेम शांत निष्ठा के बल है। ये प्रभु हमारे हैं, बस हमारे में विश्व के हैं, और इनमें सखाओं में दासों में आया प्रेम। प्रेम के बाद में कुछ कुछ स्नेह की थोड़ी सी पतली रेखा उनमें हो सकती, इसे ऊपर नहीं। रामचंद्र जी के प्रेम में हनुमान जी की आंखें गिरी हो सकती हैं, बस यही का। हनुमान में मान कभी नहीं हो सकता, प्रणय नहीं हो सकता। मान किसको कहते हैं? थोड़ी बातों पर पिछला गया हनुमान में खिलाएंगे कभी? अभी संभव होगा, इसलिए हनुमान को मान नहीं होगा। तरंग है किंतु ऊंची तरंग नहीं है उसमें, इस प्रेम में, इसलिए इनका प्रेम तप होगा, स्नेह का कुछ आ जाएगा, मान नहीं होगा। यशोदा मैया इसे बढ़कर के सखा लोग है, सखा में अनुराग तक जाएगा, विशेष विशेष सखाओं का सुबल इत्यादि का कहां जाएगा? वो स्नेह मान प्रणय राग अनुराग इनको भी पार करके कुछ महाभाव की निचली स्तर तक आएगा, वो भी सब में नहीं, प्रिय नारायण सखाओं में सुबल इत्यादि। वो उनमें कब आएगा? जब कृष्ण यदि इनको किसी कारण से गोपियों के पास में कुछ काम के लिए भेजा, उनके भावों से संक्रमित होकर के उनमें आएगा। उनका अपना भाव नहीं है, ये भाव किसका है? वो तब जब ये लोग जाएंगे सखा सुबल इत्यादि, ऐसे लोग जब वहां पर पहुंचेंगे, अब उनका भाव ब्रह्मांड क्षोभकारिता होने के कारण उनका भाव उनके भावों को देखकर, जैसे उद्धव गोपियों का नहीं करते, अब उनका भाव कुछ देखा, कुछ भाव उनमें उस समय संक्रमित हो गए, गोपियों के यहां से हट गए, वो भाव भी वहीं रह गया, ये चले आए। किस लिए चले आए? उद्धव में एक गड़बड़ी थी, अच्छी गोपियों का इतना ऊंचा प्रेम, और दिन रात विलाप करती हैं, रोती हैं, इनका कितना दुख है, और यदि प्रभु ने हमको भी त्याग कर दिया तो हमारी क्या ऐसी ही दशा होगी, मैं भी तड़पते तड़पते मर जाऊंगा, मुझे तो इस सहाज नहीं जाएगा। उसको उनका क्षेत्र ही नहीं था, वैसा उर्वरा उनकी जमीन नहीं थी, जो वो पौधा प्रेम का वो पौधा इतना विकसित और फलित पुष्पित हो सके, इतना ऊंचा गोपियों का भाव है। इसलिए उद्धव जी लौट करके चले आए, जी प्रभु आप वहां पर जाते हैं, आपको तो जो चलना चाहिए, तो बस कृष्ण रोने लगते,
वसुधर जी का फिर वही घर गए फिर आए। यदि गोपियों का भाग्य उनके लिए इतना लोभनीय था तो उनको आना चाहिए ना, तो क्यों नहीं आए? डर गए, डर करके, क्योंकि उनका क्षेत्र ही नहीं था इसलिए वही पर आ गए। हाँ प्रशंसा तो बता रही गोपियों इतना थे। अच्छा तो तुम गोपियों की दासियों करके उनके यहाँ रहो, इतना रोते रोके तब तो जाने क्या हो जाए, डरते हैं तपस्या पीछे से। कृष्ण के जब दिव्यांग पर ध्यान हो गई, कृष्ण वरधाम को चले गए, दिव्यांग कृष्ण जी ने गए, अब कहा हूं अब गोपियों के यहां ध्यान जगी, उनकी चरण भूली गोपियां तो नहीं है, उनकी चरण भूली रही उसी में लोग को कर, क्योंकि कृष्ण वहीं पर नहीं है इसलिए, इसी के लिए वो कर रहे हैं। अच्छा ये दासों का ही धर्म यशोदा जी का भाव वात्सल्य का, वो वात्सल्य का भाव अनुराग तक जाता है, वो महाभाव तक नहीं पहुंचेगा,
अनुराग के चरम सीमा तक,
क्योंकि गृहिणी गोपियों के पास में यशोदा जी मिल करके और उनसे नहीं रहने तो वो भाव संकृति में हो सकता था, किंतु दोनों भाव शत्रु है, वात्सल्य और श्रृंगार में दोनों में तीन और छह का संबंध है, वो एक साथ में नहीं रहेंगे, इसलिए ये संक्रमित भाव नहीं हुआ। दासों में कुछ हो सकता है, सखाओं में हो जाएगा, किंतु वहां पर इसलिए उनका प्रेम जितना है अनुराग तक जाता है, भाव नहीं ऊपर का आएगा, इसलिए कहते हैं गोविंद एव निखिलात्मनि रूढ़ भावा, जो निखिलात्मनि समस्त आत्माओं के परम वो आत्मा है, उस जो जगत के शिष्य स्थिति प्रलय करने वालों ईश्वरों को भी सर्वेश्वर है, उनके प्रति ऐसी भावना कि वो मेरे हैं, ये भावना तो होना समझने जो रूप भाव होना बड़ा कठिन है, किंतु गोपियों में ही देखा जाता और किसी में यह रूप भाव नहीं है। और रूढ़ भाव किसको कहते हैं, निखिलात्मनि रूढ़ भाव, ये गोपियों की रूढ़ भाव, हम लोग इसकी धारणा नहीं कर सकते, कभी वो गोस्वामी ने थोड़ा सा इसका इसका जो अभ्यास किया है हम लोग इसको श्रमण करें, और किसी जन्म में यदि वैष्णव की ऐसी कृपा होगी तो हम इसको कुछ कुछ अपनी धारणा में ला सकते, इसके शब्द भी वैसे हैं जो साधारण लोगों के लिए बोधगम्य नहीं कर रहे हैं। रूढ़ भाव किसको कहते हैं, जब प्रेम स्नेह मान प्रणय के बाद ऊपर उठता है, प्रणय में आता है, कभी कभी प्रणय से मान और कभी कभी मान से प्रणय, यह प्रणय दो प्रकार का, मैत्र और शक्त, पुनः शक्त से सुशक्त और सुमैत्र, सख्य वाला भाव बहुत ऊंचा है मैत्र से, या केवल मात्र जहां नहीं होगा जहां पर कि मध्य भाव, इसका अतिरिक्त कहीं हो नहीं सकता। मध्य माने क्या, कृष्ण मेरे हैं, ये कब होगा, जबकि स्वाधीन भक्तिका का भाव होगा, स्वाधीन भक्तिका माने कृष्ण मेरे अधीन है, मैं जैसे कृष्ण को कहूंगी वैसे चल, वही परमात्म भाव होता है और नहीं होगा, इसलिए और दोनों गोपियों का नहीं है, केवल राधिका के पक्ष वाली हैं उन्हीं में होगा और उनमें ही होगा, किसमें अधिक, यही प्रणय जबकि आगे बढ़ता है प्रणय से राग होता है, राग माने राग किसको कहते हैं, जब रंग जाता है, रंग देता है हृदय, ये भी बहुत तरह के रंग है, रंग कैसे है, कुछ कच्चा रंग है कुछ पक्का रंग है, वह पक्का रंग जो कभी भी उतरता नहीं है उसका ये मंजिष्ठ राग कहलाता है, हाँ? उसका पहले वाला निर्मा राग, वो थोड़ा सा उतना तेज गहरा नहीं होता, उतर सकता है वो भी उतरता तो नहीं है किंतु उसमें भी कुछ चीजें हैं जो नहीं है, फिर इस तरह से वो शख्स में प्रेम को नया नए रूप में अनुस्वादन कराता है, अनुभव कराता है, स्वादन पुरस्काराता है। तब मंजित सा राज्य होता है मदीय भावयुक्त, जिसको मधु स्नेह भी कहते हैं, वो बढ़कर के वहां पर होता है। वृत्त स्नेह नहीं, वृत्त स्नेह में कुछ मीठा मिलाना पड़ेगा, घी में कुछ बुरा मिलाओ तब कब खाओ तो मीठा लगे। वैसे घी चिकना तो है, खाने में चिकना ही लग जाएगा। यदि खाने में अच्छा रोटी में चिपक दो घी तो अच्छा लगेगा, किंतु बुरा के साथ में घी में चिपड़ी हुई रोटी कैसे लगती है। ऐसे मधु में कोई मिठाई मिलाने की जरूरत नहीं है, मधु अपने आप मधु मीठी होती है और घी चलता है। इसलिए मधु स्वयं ही अस्वाद्य है। यही बढ़कर के तब होता है राग, ऐसे शादी नहीं होगा, जो नवीन नवीन रंगों से चित्त को रंग देता है। जब यही अपनी प्रौढ़ावस्था को आता है तो ये अनुराग का था प्रति क्षण मनु मने नए नए रूप में ये दिखता है अनुराग। जब यही अपनी स्वसंवेद्य दशा को प्राप्त होकर जावत आश्रय विधि को धारण करता है तो इसको महाभाव कहते हैं। अब इन शब्दों को भी समझना बहुत कठिन, अभी महाभाव के घटना भी रूढ़ का यहां पर वर्णन किया गया है तो रूढ़ कैसा होगा। तो महाभाव कहते हैं स्वयं संवेद दशा में, स्व संवेद दशा को जब प्रेम प्राप्त होता है, प्रेम एक ऐसी स्थिति में पहुंचेगा जो प्रेमिक और प्रिया को दोनों को ऐसे रंग देगा जो दोनों ये भूल जाएंगे जो हम रमण है ना, सो रमणी ना सो रमण, मैं कृष्ण हूं, मैं राधा हूं, मैं रमणी हूं, वो रमण है, ये सब कुछ विस्मृत हो जाएगा और संसार को भी विस्मृत करेगा। तब ये होगा जाओ दास्य व्यक्ति में प्रेम के एक विषय एक आश्रय, प्रेम के विषय कृष्ण, वो रसराज महाभावस्था में परसराज में वो अंतिम स्थिति है। जैसे एक फूल है, पहले तो पेड़ लगाया, पेड़ में पत्ते आए, पत्ते के बाद में क्या होगा कली आए, कली से क्या होगा कुछ मुकुली अवस्था होगी, थोड़ी थोड़ी खिले, फिर कुछ अर्थ विकसित होगी, अर्थ विकसित में अभी गंध नहीं आया उसमें और रूप भी पहले विकसित हुआ, वो थोड़ा थोड़ा अब जब अर्थ विकसित हुआ उसमें थोड़ा थोड़ा सुगंध, थोड़ा थोड़ा मधुरिमा, थोड़ी थोड़ी मधुरिमा, अब भौरे उसके पास में आएंगे किंतु बैठे नहीं जब, थोड़ी देर के बाद में वो और खिल गया उसमें अब सुगंध भी आई, माधुर्य भी उसमें आए, और भौरा जा नहीं सकता और जो मड़रा रहा था वो वहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा, बैठने की चेष्टा करेगा और जब वो पूर्ण विकसित हो जाएगा भीतर से फरार आ जाएगी, माधुर्य जाएगा और अपनी चरम अवस्था तक वो सुगंधित हो जाएगा, उसमें आसपास की भूमि को सर्वत्र वो मदमत्त कर देगा, यहां तक वहां से जो हवा आएगी उसमें भी प्रवेश करके दूर तक जाकर के सबको एकदम ऐसा, ये है उसकी पूर्ण अवस्था। ऐसे ही प्रेम की परावधि जब जिसमें होएगी तो वो कृष्ण में होगी और किसमें तराधिकारी में सर्वश्रेष्ठ है। यहां पर सब गोपियों को ले लो, सब गोपियां महाभाव सब गोपियों में होता है, सब पक्ष की गोपियों, रुक्मिणी सत्यभामा में कदाचित कहीं उसकी गंध आ सकती है, चुरारी तम तिलपसी इत्यादि में कुछ थोड़ा सा देखा जाता है, पाओ तू चालू का भाव, तो उस समय में संवेद्य दशा में भूल जाना स्वयं, जब मैं कौन हूं मैं राधा हूं कि कृष्ण, दोनों भी भूल जाते, दोनों मिलकर के एक हो गए और एक होकर के कैसे कर्म किया, गिरा दी आग पर और उनको गर्म कर दिया, दोनों मिलकर के एक और उसमें रंग मिला दिया, उसी समय में वो रंग पक्का हो गया। ऐसे ही दोनों का प्रेम एक में मिल करके तब एक हो जाता, उस समय नाश हो रमणी नाश हो, उस समय में ये सब भूल जाते
प्रेम की लव।
इसको कहते हैं स्वयं संविद्ध दशा और जावदास्य वृत्ति, प्रेम के आश्रय है कृष्ण अपनी पूर्ण अवस्था में किशोर अवस्था में समस्त गुणों के जितने प्रकार के उस समय गुण है किशोर अवस्था के सब में परिपूर्ण रूप में उनमें परस्तु माधुर्य है लावण्य है और सब और राधिका जी में भी वैसे ही तो उस वृत्ति में पहुंच करके सब जगत को एकदम आश्चर्यचकित कर देते हैं। उस समय में ये रूढ़ भाव जब यही भाव महाभाव और परिपक्व हो जाता है तो उसमें ऐसी स्थिति होती है अष्ट सात्विक भाव हुमायूं से लेकर के आरंभ होता है, हुमायूं ज्वलित
दीप्त
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 उद्दीप्त दक्ष तो उद्दीप्त अवस्था में आता है और उस समय में क्षण कल्पत्व एक क्षण भी कब कृष्ण के दिगंब में कृष्ण गोचारण करके आ रहे हैं, दिन भर तो बाहर गोचारण गोपियां वहां पर खड़ी हैं अपने घर के पास में, कृष्ण का जो वहां तक तो है दिन भर तक किसी प्रकार से उनका बीत गया किंतु वही एक कल एक क्षण जो निकट आ रहे हैं वो आ नहीं रहे ऐसा मत कब कब आए कब आए, इसलिए वह एक क्षण भी और उनका एक कल्प भी कृष्ण के साथ में जब है एक कल्प जैसे रास ब्रह्मा जी की एक रात्रि रास में वो एक क्षण में बीत गया कब बीत गया उनको पता नहीं चला। ये अभी तो राजा जी का तेजा को दिया कर अरे हम लोग तो अभी आए ना अभी चंद्र को देखा पूरब की तरफ में ये पश्चिम में कब चला गया अभी तो देखा पूरब की तरफ में उठ रहा था और अभी देखा जी पश्चिम में चला गया आज मालूम रात ही नहीं हुई ना क्या ऐसे सुन ये है एक कल्प उस ब्रह्मरात्रि में कितने कल्प चले गए एक कल्प है एक कल्प ऐसा हो जाता है उसको कहते हैं रूढ़ भाव। उद्धव जी इस रूढ़ भाव को देख करके कह रहे हैं ओ इन्हीं का जीवन सार्थक है गोपियों का जो कि गोविंद के प्रति इनका ऐसा रूढ़ भाव है वांछन्ति जत भवोभियो संसार से गरने वाले मुक्ति की इच्छा रखने वाले मुमुक्षु लोग वांछन्ति मुक्ति की रक्षा की इच्छा करने वाले लोग इसकी वांछा करते हैं और मुनयो वांछन्ति मुनि लोग कौन नाग प्रवृत्ति जितने मुनि लोग हैं साधारण मुनि नहीं कर्मकांड की शाखा पर बैठे हुए मुनि लोग जो होते हैं या ज्ञान की शाखा पर बैठे हुए जिसकी शाखाएं हरिद्वार और काशी इत्यादि में फैली हुई वो शाखाओं पर नहीं ये तो वृंदावन की सुरंग लताओं से पताओं से भरी हुई डाल पर बैठने वाले प्रेमा भक्ति रूपी डाल पर बैठने वाले ही ये मुनि के लिए यहां पर मुनयो ऐसे मुनि मुनियो वो उसमें विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर जी ने व्याख्या की है गोपी गीत में मुनो मुनि यहां के मुनि जो है मेन उम्मीद का इसमें रायण मुनयो हजार बने तो वो मुनि ये सब मुनि वयंच वयंच मने ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं या सुखदेव गोस्वामी के बदले यहां पर उद्धव के लोग हम लोग जो है हम लोग भी उन रूढ़ भावों को पाने की लालसा करते हैं वांछन्ति माने क्या
इच्छा कर
अभी भी पार इच्छा कर रहे हैं अभी तक वर्तमान काल है नहीं वर्तमान अभी भी हम वांछा ही कर रहे हैं अभी पाए नहीं है अभी प्राप्त प्राप्त नहीं कर सकते, केवल वांछाएं लेकर। तो जो भाव से भीत जो है ज्ञानी लोग और मुक्ति चाहते हैं, इनके लिए तो कभी संभव नहीं। फिर तो ये लोग भी इच्छा कर सकते हैं, कब इच्छा कर सकते हैं? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति समस्त देश विदेश मद्भक्ति लभते। इस परा ये पराभक्ति है। यदि वैसे ज्ञानी लोग भी जो ब्रह्मभूत हैं, छह प्रकार के जो दोष है जन्म मरण और सब है जाते अस्थि वक्त नहीं, और दूसरे ब्रह्मभूत का लक्षण
आप आत्मा
अपहत आत्मा
विचरो
विषु को ये सब जो भाव आ जाए तो ये ब्रह्मभूत होगा। तब उसमें कोई संसार की वस्तु की आकांक्षा नहीं करता, आत्म काम हो जाता है और किसी चीज से दुखी नहीं होता, सब जगह समदर्शी हो जाता है। ऐसे लोग यदि वैष्णवों का संग करे, रसिक वैष्णवों का, तब होगा ये पराभक्ति के अधिकारी, अन्यथा नहीं हो सकता। तो ये लोग चाह सकते हैं, हो सकता है, किंतु उनके लिए संभव नहीं। साधारण मुनियों के लिए भी संभव नहीं। श्रुतियां भी इसको चाहती हैं ना, श्रुतियां भी राज को देख करके उनके अंदर में लालसा जगी और वो लोग भी जौतुकी के रूप में उसको पीछे से साधन करके आ रहा था। नहीं है जो पाया कि वांछंती यहां इसमें कहा किन ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रहस्य। इसे मनुष्य जीव के लिए यदि यह रस मिल गया, यदि कथा रस से इस कथा में रस उनको मिला, तो ब्राह्मण इत्यादि जन्म की कोई भी आशा। ब्राह्मण माने यहां पर त्रि जन्म के लिए कहा, जन्म माने शौक्र सावत्र और दक्ष। इन जन्मों की भी कोई आवश्यकता नहीं है, जहां जो है वहीं से ये लाभ पा सकता है। यदि हरि कथाओं में रस हुआ, उन रसिक और भाव भक्तों का यदि संग मिल गया तो, और यदि नहीं मिला तो नहीं, अथवा यदि मिल नहीं मिला तो फिर ब्राह्मण जन्म इत्यादि की या ब्रह्मा होने की भी क्या आवश्यकता है। बेकार का वो है आराध्य तो यदि हरि तपसात के, यदि भगवान की आराधना यदि हो गई तो आराध तो तपस्या की आवश्यकता। नाराज तो यदि हरि, यदि हरि की आराधना नहीं तो तपस्या क्या कर लेगा। ऐसे यदि ब्राह्मण इत्यादि हो गए, ब्रह्मा भी हो गए और प्रेम का रस साधन नहीं मिला तो उनका जन्म बेकार है। और यदि यदि वो मिल गया तो फिर इसकी आवश्यकता क्या है। वही कह रहे हैं यदि इस ऐसे रस कथा में कथारूपी रस में यदि थोड़ी सी लालसा लोग उत्पन्न हो गया तो जीवन साथ कर, और अन्यथा ब्राह्मण जन्म लेकर कभी कोई भी आवश्यकता नहीं। यहां तक कि ब्रह्मा जी भी बन करके कोई भी लाभ, क्योंकि ब्रह्मा जी भी तो कहते हैं ना पदभूरी भाग्य जन्म जन्म इत्यादि उन्होंने कहा है। इसलिए यहां पर कहते हैं कि ब्रह्म जन्म भी कोई आवश्यकता, इसलिए यहां पर करें ब्रह्मा उद्धव और दूसरे लोगों को भी गोपियों के इन रूढ़ों को देख करके लोग उत्पन्न हो जाता है। पाएंगे कि नहीं पाएंगे तो पीछे की बात है, अंत तो लोग हो जाता है। इसलिए भाव होने पर इन कथाओं के प्रति उनको भी रस आने लगता है, इसलिए वो लोग और सब लोगों से श्रेष्ठ हो जाते हैं उन भावों की कामना। आगे
पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
राधाकुण्डं देवरो राधिका माधुभाषा वंशा पतितानां पावने
जब परिपक्वावस्था उपस्थित हो जाती है तब उसकी उस स्थिति को देखकर के भावों को देखकर ब्रह्मा इत्यादि को उद्धव को भी और सब लोगों को शोक होता है जो मैंने पाने की लालसा उसी को दिखलाया है। वन क्षण की जब वन क्षण की मंशा करते हैं कि कोई
नहीं पा
अब तक तो मिला नहीं और विकलात्मन ये रूढ़ भाव रूढ़ भाव मैंने निकले रूढ़ भाव की व्याख्या हमने कुछ वो केवल दुखी में ही रूढ़ भाव है जिसके लिए कल हमने व्याख्या तो दुखियों में वो रूढ़ाव है उसी जगह में इसलिए उनको देख करके ब्रह्मा इत्यादि में भी और वो उद्भव में भी उसको प्राप्ति होने की लालसा पृष्ठ ही रति पृष्ठ ही मैंने ये महाप्रभु जी की कृपा ऐसी है उसकी यदि कृपा पड़ गई तो उनकी कृपा से ऐसी भावमय भक्ति होती है जो पृष्ठ ही मैंने नारद जैसे पृष्ठ लोग हैं
जो निराश नारद
ब्रह्मा नहीं नारद नारद है प्रेष्ठ ब्रह्मा जी कभी वृद्धि नहीं जाते उनको उनके प्रति कुछ भी ऐसा भाव नारद जी को वो ये पूछ रहा था है जो ब्रह्मा जी को नहीं हुआ तो हम लोग कैसे हो ब्रह्मा जी के पुत्र थे ना नारद
नारद जी ने कैसे हो गया
और नारद जी दासी के ब्रह्मा जी का पाठ दो ब्रह्मा जी के पुत्र न होकर के दासी पुत्र तो इस दासी पुत्र को जो हो गया वो ब्रह्मा जी को नहीं जैसा तो हो सकता भगवान की कृपा ही ऐसी देव का तो कल हमने इसके विषय में बतलाया कि भगवान की कथा ही ऐसी है वो भाव ही ऐसे हैं जिसको वो भाव हो जाता है फिर उनको ये लालसा ऐसी होती है जो और सब लोगों के लिए संभव है ऐसे भाव भक्त ही ये सब में लोगों का लोग होने से उनके अंदर में ऐसे ही भाव है
इससे ये भाव ही नॉलेज
इसे कहते हैं भगवती मुनिगण आर देव ज्ञान चरण कांक्षा करें अनुखान से गोविंद रूढ़ भावापन्न गोपीधन से गोविंद रूढ़ भावापन्न गोपीगणपन्न कृष्ण रस आगे ब्रह्म जन जन्म नहीं गण ब्रह्मा के जन्म होने की भी कोई गिनती नहीं रखते ऐसा वो एक सखा सखा जानवा भजन अंत में कहते हैं ऐश्वर्य प्रिय जो भक्त हैं उनको भी गोपी भाव की लालसा उत्पन्न हो जाती है लालसा उत्पन्न होती है कि नहीं उसके पीछे की बात किंतु ऐसा जो भाव है रूढ़ भाव ऐश्वर्य प्रिय भक्त जो है उनको भी ऐश्वर्य प्रिय क्यों कौन है मथुरा की कुमारी राजाओं की पत्नी है रमणीय महापुरुष गण कब जब कृष्ण वहां पर गए रंगस्थली में और चारों मस्तिष्क से उनको युद्ध होने की तैयारी हो रही थी। उस समय उन्होंने कहा कि इस सभा को अधर्म लग गया, यहां पर धार्मिकों पर आना उचित नहीं है, नहीं तो पाप स्पर्श करना। और उस समय में गोपियों के सौभाग्य का वो वर्णन कर रहे हैं, गोप्य कपक की माचरण जनुष्म रूप लावण्य सार असमोनंद सिद्धम पृथ्वी तिगम तमुषवाधिनवम दुराप एकांत भान जसस मथुरा में ऐश्वर्य भाव उनको ऐश्वर्य भाव ने उनको भगवान ज्ञान कृष्ण को साधारण नहीं जाना भगवान भी ज्ञान। तब द्वारका से ऐश्वर्य यहां अनुभूत अधिक होने पर अनुभूति कुछ कम है, ऐश्वर्य वहां पर अधिक अनुभूत होता है और वहां से ऐश्वर्य कम अनुभूति होती है मथुरा में और मथुरा से कम किंतु है ऐश्वर्य अधिक। इसलिए कहते हैं ऐश्वर्य प्रिय जो भक्त हैं मथुरा के रहने वाली थी वो कारण है कृष्ण को रंगस्थली ने देखी और चारों मस्तिष्क से लड़ते हुए देखा तो वो कारण है वो कपट की मचारण जब अनुष्ठा जब अमुष्म अमुष्म माने कि वो जो कृष्ण है जो लड़ रहा है उनको हाथ से दिख रहा था अमुष्म माने वह और यह अंगीय सब यह या खत्म कर जब युद्ध हो रहा है तो सारा शत्रु नहीं इसे अमुष्म रूप उस अमुष्म रूप को उस रूप को कृष्ण कैसा रूप लावण्य सार असमोनंद सिद्धम लावण्य का सार लावण्य सब सौंदर्य का सार और उसका सार और लावण्य का सार और असमोत्थ असमोत्थ जिनके समान भी कोई रूप नहीं है और जिनसे बड़ा भी नहीं है इसका दूसरा शब्द है असमोत्थ और दूसरा
साम्य असाम्य अतिशय
साम्य अतिशय
न साम्य
साम्य भी नहीं है अतिशय भी
अतिशय भी
ऐसा जो रूप है और कहता है अनन्य सिद्धम दूसरे दूसरे के द्वारा वो
सिद्ध नहीं हुआ
वो सिद्ध नहीं
किसी स्वयं
सिद्ध है किसी आभूषण के द्वारा किसी और के द्वारा ऐसा अनन्य सिद्धम उस रूप को दीर्घि पिबं अनुसवाद नवम दुआ आंखों से उसको पी रही है कौन पी रही है गोपियां इसलिए उन्होंने न जाने कौन सा तप किया था कि उस रूप को रस के रूप में पी रही है कैसे पी रही है आंखों से पी रही है मुख से नहीं इवन अनुस्वाद जैसे मदिरा पान किया जाता है 800 मदिरा ऐसे ये पान कर रही है प्रमत्त हो रही है उस समय लज्जा इत्यादि उनकी छूट जाती है कौन देखता है कि नहीं ऐसा नहीं और खुराक में पतन को दुर्लभ किसी के लिए सुलभ नहीं है बस गोपियों के लिए सुलभ है ऐसा एकांत धाम जसस श्रीय ऐश्वर्य यद्यपि जस श्री ऐश्वर्य तीन दिया किंतु इसका अर्थ है छ समग्र ऐश्वर्य भी जस की ज्ञान हो रहा है छ इच्छाओं के जो चरम सीमा है वो कृष्ण है एकांत धाम उसके हैं और उस रूप को गोपियां मदिरा की भांति मद्य की भांति वो पान कर रही है अपनी किसी को भी सुना चलवती ठाकुर जी अपनी भाषा में बिना करते हुए देते हैं। भ्रांत होना, बड़े प्रसन्न होकर के अरे मरी गई मरी मरी गई ऐसे कर ये वृंदावन भूमि वहां सुख संपन्न ये भूमि और इस वृंदावन में ले रही महामधुर भूमि है सुकृति संपन्न भूमि और उसमें भी ये किस लिए वृंदावन भूमि ऐसे माधुर्य में ये भूमि हुई गोपियों के पति श्रेष्ठ अत्यंत श्रेष्ठ गोपियां हैं ब्रजभूमि का जीवन ये गोपी है कृष्ण को नहीं लग पाया कृष्ण तो मथुरा में भी है द्वारका में भी है किंतु यहां पर ब्रजभूमि में गोपियों के साथ वो होने से ही ऐसे हैं महापुरुष गुण अति श्रेष्ठ है इसलिए वृंदावन की जीवन स्वरूप ये गोपी है गोप्य अत्यंत गोपनीय है जैसे शरीर में प्राण गुप्त रहता है इस तरह से ये ब्रज की ये गोपनीय है आत्मा स्वरूप अथवा गोप्य कृष्ण को भी गुप्त रखती है अपने भावों को भी गुप्त रखने लगे
वेदांत में भी यही है कि कृष्ण को अपने भाव के द्वारा अच्छा दिखते थे
उन्होंने हिमाचल की ये गोपियां ऐसी हैं जो वृंदावन में धन्य है और वृंदावन को धन्य बनाती है और कृष्ण को भी गुप्त रखती है अपने भाव के द्वारा और वेदों में भी गोप्य है स्वयं वेदों में भी गोप्य है उपनिषदों में भागवत में भी गोप्य है तो ऐसी ये गोपियां उन लोगों ने तीम आचरण उन लोगों ने क्या किया था अर्थात कौन सी तपस्या की या कौन सा कार्य किया दंत उन्होंने किया यदि कोई जानता है कोई ज्योतिषी किया है तो वो बतला दे तो हम लोग आज ही वो करने के लिए तैयार ये कर रहा था और ये उसको अपनी आंखों से पालन करती हैं यदि हम ध्यान लें कि कौन सा तपस्या करके आचरण करके उन्होंने कृष्ण के इस मधुर रूप का भरोसा किया तो हम आज ही आरम्भ कर दें और उनको हम पालें सत्य तप तपस यदि यूजम सर्वज्ञ सकित मुखा ज्ञान यदि किसी सर्वज्ञ के मुख से हम हो सके हम यदि जाने तो आज ही हम तपस्या आरम्भ कर
तो हम उस तपस्या को कर अपराशय कीर्तन ननुमल जी कीर्तन लगाइए
सखियों यदि किसी सर्वज्ञ के द्वारा हम इस विषय को ध्यान दें कि गोपियों ने कौन सा तप किया है जो माधुर्य की अंतिम सीमा वाले इस कृष्ण के रूप रूपी रस को ये गोपियों ने कैसे पान किया है तो हम भी वही करें उसी समय कृष्ण को पान कर अच्छा सचमुच में ये कैसे होगा कैसे कोई पान ये गोपियां जब तक गोपियों का भाव नहीं होगा तब तक कोई भी नहीं उसको इस रूप में पान कर इसलिए ये करें इसलिए कभी ये कौन सा तप किया हम भी वैसे ही पान करते तो पान कर लो कुछ न तो खड़े हैं क्यों नहीं पान होगा बिना भाव के नहीं होगा कृष्ण वही रहेंगे तो ये कर रही है दूसरे रूप में, यहाँ पर कृष्ण को जो वो देख रही है। यहाँ पर कृष्ण को क्या देख रही है? कृष्ण बड़े बड़े पहलवानों के द्वारा आक्रांत हैं और उनको कभी नीचे गिरा दे, और ये देख रही है जैसे इतने बड़े बड़े पहलवान ये कृष्ण को जरूर पराभूत कर रहे हैं। तो ये पराजय के सम्मुखी होकर के सम्मुख होकर के कृष्ण को ये काल रूप देख रहे हैं। अभी ना कभी ये कृष्ण को पछाड़ेंगे, और कृष्ण उस समय में कुछ मुख क्रोध कर रहे हैं, क्रोध में मुख और अपने ऊपर के दांतों से मुख को
दबा रहे हैं,
पकड़ रखा है, कुछ क्रोध आ रहा है। बलदेव जी का भी वैसे ही, और उनसे लड़ रहे हैं। इस समय में वो कुछ पराधीन है, इसके पराधीन लड़ने के लिए पराधीन, वैसे युद्ध में पराधीन नहीं, किंतु लड़ने के लिए वो पराधीन है, अधीन है उसके। और उस समय में उनको देख रहे हैं, और गोपियां कैसे देखती हैं? सिंह का पल का सिंह है एक, थिएटर का सिंह एक होता होगा कि नहीं, खांचे में रखा हुआ जो सिंह है जो कि थिएटरों में आते हैं, वो कैसे होते हैं? जब लोग सिकंजों में बंद रहते हैं और वहां पर खड़े बड़ी दयनीय दृष्टि में देखते हैं वो। और सिंह जब जंगल में वो सिंह आता है वो कैसा
मंदन का
कहीं भी कानून में देखता, एकदम भयंकर रूप में रहेगा, वो देखने लायक होता है। बहुत से दूर से देखकर कहीं लोगों का ये चित्त है कैसा हो। ऐसे ये कृष्ण जब वृंदावन में रहते हैं स्वतंत्र रूप में रहते, मोर मुकुट धारण किए हुए, यहाँ पर वृंदावन का खूब सुंदर रमणीय प्रदेश जमुना दीदी वहां कलकल बह रही, कृष्ण को देखकर के मोर नाच रहे, मुनि के रूप में सब ये पक्षी इत्यादि सब उनको देख रहे, कृष्ण बंसी बजा रहे, गोपियां उनको अपने आंखों से उनका अर्चन कर रहे, गोपी नाम मेहनत अथवा जैसा सूत्रों में दूसरा श्लोक क्या है, दिव्यत बृंदारंगमदनागार सिंहासन श्री श्रीराकाश वृंद देव वृष्ठा इत्यादि ये सब रूप है। वो वृंदावन नहीं हो सकता हो कहीं, यहाँ पर युद्ध करते हुए एक क्रोध के भाव में उनको हम देख रहे हैं, और यहाँ पर कृष्ण स्वच्छंद गति से उनको गोपियां प्रेम से उनको मान कर रही हैं। इसलिए यदि हम उनको पीना चाहती हैं उनके उस रूप को, तो हमें वृंदावन में जन्म लेना पड़ेगा गोपी के रूप, तभी उनको हम इस रूप में देख दूसरों के लिए संभव। तो हम अभी तपस्या करेंगे, गोपी बनेगी, गोपी होकर के तब ही वृंदावन में आकर के कृष्ण के इस रूप को पाने की, इसलिए हम ऐसा आज करना चाहती हूं। तब एवं अस्मिन जन्म में, इसी जन्म में और विलंब नहीं, इसी जन्म में बजभूम गोप्य फले गोपियां होंगे एवं तपस ता अमुष्म रूपम सौंदर जामृत्युवं, जैसे गोपियां उनका अमृत पीती हैं तो उनका वैसे हम भी उनको पान करें। मथुरास्था अश्य पराभव विषम पीतवा, यहां पर हम पराभूत होकर के कृष्ण को जो देख रहे हैं युद्ध से उनका ऐसा भाव, और हम भी यहां पर कैसे देख रहे हैं, हम भी पराभव, हम भी अधीन हैं, यहां पर हम उस रूप में नहीं देख सकते हैं स्वतंत्र रूप से, इसलिए हम लोग तब जल रहे हैं वो इसको देकर। तासाम वृद्धि पानस से तादृश तप क्रम। अब उन्होंने कौन सा तप किया, गोपियों ने कौन सा तप किया, और गोपियां कौन सी है जो तप किया। गोपियां बहुत प्रकार की, जिसमें राधा जी जो गोपी है कौन तपस्या की, तीन लोग के कारण से तेरे हो गया। तो राधा जी ने कौन सा तपस्या किया, ये कल्पना कर सकते हैं राधा जी की तपस्या से वैसा नहीं होगा। वो कृष्ण की लाडली शक्ति विलास के लिए उनसे पुत्र हुई है, बस इसलिए उनकी कोई तपस्या की कल्पना मत करो। जहाँ तपस्या की बात आएगी तो वो सार्थक जीव के रूप में परिणत हो जाए, इसलिए तपस्या। कोई भी तत्व को जानने वाला व्यक्ति ऐसी प्रार्थना नहीं करेगा, न ऐसी भावना न रहेगा। और उनके एक एक भाव ललिता विशाखा इत्यादि सहस्त्रों होती है, इसलिए उन लोगों के लिए भी तपस्या नहीं। अब तपस्या है किन के लिए, श्रुतियां जो वेद की के मंत्र है, ये वेद के मंत्र सर्वज्ञ हैं, और उन लोगों ने अपना रूप बना करके कृष्ण के रास में उपस्थित होकर के दूर से देखा, और देखकर के गोपियों भाव को देखकर के मोहित हो गए, और कृष्ण को उसी लालसा से पाने के लिए उन लोगों ने आराधना की जो माया की या गोपाल मंत्र और अथवा दोनों की, ये दोनों की आराधना करना होगा। एक दो जन्म नहीं, न जाने कितने कल्पों तक हम लोगों ने अभी तक कितने कल्प तक आराधना की। जब से सृष्टि प्रारंभ हुई तब से हमारा जन्म चल रहा है और अभी तक हो रहा, अब इस जन्म में हम इतनी दूर आए, हम लोग एक ही साथ के हैं, जितने भी विश्व में जीते है ना सभी एक साथ, इसमें कोई ऊपर चला गया कोई नीचे चला गया, ऐसा विषमता क्यों। अपने अपनी आराधना पर यह निर्भर, किसी को सुजोग ही भी नहीं मिला। हम लोग का इतना सुजोग मिला कि अभी मथुरा तक तो पहुंचे हैं, अब यहाँ से थोड़ी दूर वृंदावन यहाँ तक तो पहुंचे हैं, इसमें कोई कोई यहाँ आकर के भी वृंदावन के निकट अभी नहीं पहुंचे। जबकि श्रुतियों ने इतनी तपस्या की, कितने कल्पों तक, एक कल्प तक नहीं, न जाने कितने कल्पों तक। और ये मुनि लोग मुनिचरी ये एक ही जन्म में नहीं, न जाने कितने जन्मों का फल से वो त्रेता युग में दंडकारण्य में उनकी आराधना करते थे, बहुत उन्नत स्तर तक आए थे, भावावस्था तक आने वाले थे या हो गया था। भावावस्था के बाद भावावस्था माने स्वरूप सिद्धि, उनकी स्वरूप सिद्धि है किंतु वस्तु सिद्धि नहीं हुई, और अभी उसके योग्य नहीं थे, किंतु रामचंद्र की कृपा से आराधना करते करते इन्हीं मंत्रों के द्वारा तब वो गोपियों के गर्भ से पैदा होकर के नित्य सिद्धाओं के संग में कृष्ण के इस रूप का वो रूप बन गए। इसलिए यदि किसी की लालसा होगी तो यही दो मंत्र हैं, इन्हीं दो मंत्रों के माध्यम से हम लोग आराधना करते करते न जाने कितने कल्पों में इसको पा सकते हैं। बड़ा किंतु इस लाइन में आने पर बहुत सी बात विघ्न बाधाएं होती हैं, बहुत लाखों जिसको अपराध कहा गया, अनर्थ कहा गया, कल हमने उसका वर्णन किया। विशेष करके वैष्णव अपराध महामुश्किल है, सबसे पहले उसको नंबर दिया दस अपराध, रहा सहा भाव भी दूर हो जाए। यदि बिना अपराध के अपराध नहीं किया तो भी भक्त महाराज जी उसे दो जन्मों के लिए चुप हो गए, यदि अपराध होता तो वो एकदम खत्म हो जाए। अपराध कुछ किया कि नहीं, अपराध इंदा नहीं हुआ, केवल आसक्ति उसमें हो गई, इसलिए तो उनका दो जन्म नष्ट हो गया।
और यदि अपराध किसी कारण से हो जाता तब तो वो समूली उठा कर, इसलिए अपराधों से बचने की चेष्टा यदि वैष्णव अपराध हो, इसलिए वैष्णव अपराधों के जो जो लक्षण है उसे दूर करना। गुरु के प्रति अवज्ञा भी नहीं होनी चाहिए, गुरु के प्रति अपराध नहीं लिखता, अपराध भी हो जाता है किंतु उन्होंने छोड़ दिया किस लिए। यदि सचमुच में यदि कोई होगा सेवक गुरु से तो वो अपराध नहीं करेगा, गुरु की अवज्ञा कभी उसको भी अपराध में लिया। अपराध में और अवज्ञा में क्या अंतर,
अपराध हो जाएगा
उससे अपराध यदि जानबूझ करती, इसलिए इन अपराधों से बहुत बचना चाहिए। गुरु किसको कहते हैं, जिनके द्वारा यह गुरु भाव परमात्मा में प्रवेश का सुयोग हमको मिल रहा है, उसका हम कोटि जन्मों के ऋणी है, इसलिए उनके प्रति कभी भी किसी प्रकार से अवज्ञा नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार।
इसमें यह आता है कि वैष्णवों की निंदा करने पर अपराध हो जाए और गुरु जी की अवहेलना भी कर ले तो उसका
भी अपराध
होगा।
यदि निंदा मत करो, गुरु जी की निंदा आदमी नहीं करता है किंतु बहुत से लोग करते भी हैं, तो उनको समझे परमात्मा से संपूर्ण रूप से वो बाहर। और जो आदमी निंदा तो नहीं करता है अवज्ञा भी कर दिया, अवज्ञा मैंने क्या जिनके बिना भी हमारा चल सकता है, बातों बात में अवज्ञा की अवहेलना कर उनकी बात नहीं माना। गुरु त्यागी त्यागी तो बहुत दूर की बात है, वो तो महान से महान अपराध हो जाएगा गुरु त्याग। गुरु त्याग उसी स्थिति में होगा यदि वो वैष्णव अपराधी हो, निम्न अधिकारी के गुरु को भी नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे हृदय चैतन्य को उन्होंने नहीं छोड़ा, उनकी अवज्ञा नहीं की। जब गुरु त्याग की तो बात ही यहां नहीं है, उस गुरु के प्रति नहीं त्यागने पर भी वो तो महा 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 अपराध हो गया। और इसमें है यदि अवज्ञा यदि किया, जिनके द्वारा हमारा परमात्मा की भावना बनी, कुछ श्रद्धा आई, कुछ रुचि भी धीरे धीरे आई, हम उसमें प्रवेश करने जाए और उसके प्रति ही अवज्ञा यदि आ गई, तुच्छ बुद्धि आ गई, उनकी बात नहीं माना, उनके आज्ञाओं का उल्लंघन किया, ऐसी बात की जैसे उनकी अवज्ञा, वो तो महान है वो तो नहीं लेंगे, यदि उन्होंने ले लिया अपराध तो वो महान उतने वो लोग नहीं लेंगे, किंतु फिर भी शास्त्र में कहा उनके चरण की धूलि उस भाव को नष्ट कर दिया। खूब सावधानी से 64 जो अंग हैं इन पर विचार करके हम लोग भक्ति में प्रवेश करें, नहीं तो रही सही मिली हुई चीज भी हाथ से निकल जाए। ये है तपस्या, तपस्या माने क्या, ये प्रारंभिक ये एक प्लेटफॉर्म है और उसके बाद में तब गोपाल मंत्र काम करें, इसको यदि जो प्रदान करना है उसके कभी भी कोई भाव और निश्चिंत रूप से जो हमको कृष्ण मिलती जाएंगे आशा बंधव अवसर से इन मंत्रों का जाकर इनको राधा कृष्ण का स्वरूप समझो। इसलिए पहले दशाक्षर मंत्र होगा, इसलिए पहले वाला भाग बात दे करके बस गोपियों के कारण पल्लव स्वाहा बस कितने, अब उसी को देखते हैं कि अनाधिकारी आदमी हो गया ना, अधिकार नहीं है अभी, इसलिए अधिकार देने के लिए और उसमें थोड़ा सा जोड़ करके उनके, जैसे कि बड़ी कठिनता से हम बिना सीढ़ी के कुछ ऊपर जा सकते हैं, तो पहले तो लोग लंबे चौड़े मजबूत होते थे इसलिए उतनी सीढ़ी की जरूरत नहीं रही, एक फुट ऊंची सीढ़ियां होती थी ना पहले, और अब 6-6 इंची ऊंचाई पर एक एक सीढ़ी, हम लोग ने 6 इंची बनाया, किस लिए बनाया,
पहले यहाँ पर थी, तुम लोगों ने देखा एक ऊंची चीज थी, हम लोगों ने उसको तोड़ा करके इसलिए सुगमता से उसको जाने के लिए। उसी तरह से पहले जो दशाक्षर ही मंत्र था गोपाल मंत्र कहलाता, सुगमता के लिए अनधिकारी व्यक्ति भी इसमें प्रवेश कर सके, इसलिए उसमें और लगा दिया स्पष्टीकरण, नहीं तो वही काफी है। महाप्रभु जी को इतना ही मिला था, माधवेंद्रपुरी जी को इतना ही मिला था, बस स्वाद उतना ही। और काम गायत्री इस गायत्री की सार्थक परिपक्व अवस्था वो हमारे हृदय में प्रकृष्ट रूप से प्राप्त उदय उसके लिए प्राप्त। कैसे उदित होंगे, अनंग है ना, तो कैसे उदित होंगे, उस भाव के साथ में उदित हो, ऐसी भावना यदि हो ना, वो भाव कैसे आएगा कृष्ण में, यदि वो अपने प्रथमतम शक्तियों के साथ में यदि रहे तो। ऐसे नहीं, यह है इसकी आराधना, इसकी आराधना करने पर ही उनको पास। इसलिए ये लोग भी सुतियों की भांति अथवा मुनियों उच्चतरी मुनियों की भांति तपस्या, हम लोग के संप्रदाय के अतिरिक्त के लिए सब भावना नहीं है करनी। इसलिए हम लोग अभी जो कुछ कर रहे हैं आराधना पर चल रहे हैं, इसको आराधना समझ करके चलना, तभी यह संभव होगा। कैसा उनका रूप, लावण्य, लावण्य का सार कृष्ण का रूप है, इसका वो गोपियां पान करती हैं स्वच्छंद भांति से, स्वच्छंद भांति से पान करती हैं। लावण्य मैंने तो गोरा रहने से ही, गौर वर्ण रहने से ही सुंदर नहीं होगा, श्याम वर्ण भी रहे किंतु मुख पर पानी हो, लावण्य हो, तब वो उसमें सौंदर्य होता है। बहुत से लोग हैं उतने गोरे नहीं है किंतु मुख पर पानी होता है, लावण्य होता है, तो जैसा जैसे कि मोती में भीतर से रश्मियां कुछ निकलती है, ऐसा होना चाहिए। यदि वो माने तो रूखा होगा, तरूखा, उसी को कांति कहते हैं। तो उस लावण्य के सार को सब समय वो पीती है गोपियां। लवण्यम लवण्यमधिकम वर्तत, किंतु लावण्य सार सारस्य पिज्जा सार, लावण्य का भी जो सार है उसका भी सार स्वरूपों में एवं, उसका स्वरूप ही है वो कृष्ण का, के रूप का स्वरूप ही ऐसा है, लावण्य का सार का भी सार है। ननु श्लोकादिभ्यो अपि नीने गुरुलोके अपि अस्मिन् चेत एवं रूपम दृश्यते। अजी क्या इस जगत में तो ये रूप नहीं होगा, कहां होगा, महावैकुंठ में। यदि ऐसा हो तो हमें नहीं, ऐसा मत करो, ये इस पृथ्वी लोक में भी वृंदावन में यह रूप वृंदावन को महावैकुंठ से भी ऊपर समझो, से श्रेष्ठ समझो, यह वृंदावन महावैकुंठ अधिकम मधुरम नारायण से रूपम भवे एक श्लोक है, श्यामे रमा रमण सुंदरता वैश्य सौंदर्य मोहि समस्त जगत जनस्य श्याम से बड़ा भूत पुरुष कदम कदम पानी दिरे
किरण रूप।
ये इंद्रिया कौन सी है, इंद्रिया कहाँ रहती है, नारायण, वो इंद्र से भी कोटि गुण श्रेष्ठ है,
लक्ष्मी
माँ जो लक्ष्मी, उनके जो पति नारायण है उनसे भी नारायण से भी श्रेष्ठ है जिनका रूप, उसको देख करके वो लक्ष्मी और नारायण दोनों मोहित हो जाते हैं, नारायण भी मोहित हो जाते हैं। जब कृष्ण स्वयं मोहित हो जाते हैं तो नारायण मोहित हो गया तो कोई बनता
गोविंद माधुर्य देखे वासुदेव
वासुदेव का तो हो जाता है, इसलिए कोई बड़ी घटना हम लोग का दुर्भाग्य है और हम लोग की ऐसी साधना है जो हम लोग उस रूप में उनको अनुभव कर रहे हैं, नहीं कर रहे असंभव नारायण राम इत्यादि रूपों में भी बहुत नहीं है, असमोह समय रूपम पापी नाथी, उनके बराबर किसी का रूप नहीं है, स्वयं द्वारकाधीश या मथुरेश कृष्ण का भी नहीं, इसलिए कह रही है हम तो मथुरेश कृष्ण का भी रूपान कर रहे हैं और उन्हीं को भवस्था में लड़ते हुए और गोपियां वृंदावन में स्वच्छंद रूप से कृष्ण के असमोद्ध रूप का रूपान कर रही है, ऐसा रूप वर्ण किया बृहद भगवतामृत में सतभ्रामा रुक्मिणी इत्यादि को कल्पना नहीं है, पद्मा इत्यादि की तो बात नहीं है, कल्पना नहीं कर पा रही कितना सुंदर रूप होगा, गोपियां गोपियां इनको क्यों इतना प्यार करती हैं और गोपियों को ये प्यार इतना करते हैं ये इनके समझ में नहीं है। कृष्ण ने एक मिनट के लिए उस रूप को वहां पर प्रकट ब्रह्मा जी के माध्यम से प्रकट कराया, उस समय कृष्ण गोचारण करने के लिए जा रहे हैं, यशोदा जी की मूर्ति वहां पर बनाई गई है, हाथों में मक्खन लेकर के खड़ी है और कृष्ण ने ठुमक ठुमक नृत्य करते हुए पीछे से आ करके थोड़ा सा उसमें चुरा लिया जो मैया को मालूम न रहे और ले करके और किस प्रकार से जैसे दो पैसे ऐसे ऐसे करते हुए लड़के चलते हैं उसी रूप में चले, मोर मुकुट हाथ में बंसी विश्व को विस्मरण करने वाला ऐसा लावण्य सारी था, जबकि आगे बढ़े सखाओं से पर्दे से उनसे भी आगे बढ़े, जब जिस समय गोपियों को देखा गोपियों के मध्य में वो जब खड़े होते उसको देख करके रुक्मिणी सप्तभामा सभी मुड़ी सप्तभामा दौड़ी पकड़ने के लिए, उसमें रोहिणी मैया और कौन बलदेव जी ने और उद्धव उठाने उन लोगों को मना किया, नहीं तो उसी समय में पकड़ने के लिए इतना सुंदर, इसलिए ये भी उसी रूप का चिंतन कर रही है। इसलिए उनसे अधिक की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, पर भी कृष्ण ने तद रूपम कृत अर्थात कृष्ण का यह सुंदर रूप कहां से आया, मैया से प्राप्त हुआ न कि आभूषणों के द्वारा प्राप्त हुआ न कपड़ों के द्वारा यह हुआ न किस रूप या वृंदावन में होने से यह हुआ, नहीं अनन्य सिद्धम अनन्य सिद्ध, तब एक बात है यह बात थी गोपियों के सानिध्य में वृंदावन के होने के वजह से ही इनका इतना बात थी अनन्य सिद्ध होने पर उनका स्वाभाविक रूप है। ननु एवं अपि एतद् रूपम् तासद् एकरूपत्वेन पश्यन्ति चेत् तदापि तासां नासक् चमत्कार
न असत्
न
सकृत चमत्कार सत्यत्र असंकृत चमत्कार,
ये कह रहे हैं कि अनसवाद नवम प्रतिक्षण उस रूप का ये पान कर रहे हैं, हम लोग किसी
कृष्ण के बहुत से चमत्कार हैं केवल एक ही बार एक समय में चमत्कार देखा इतना
हमेशा निरंतर उनके नवनवायवन रूप में चमत्कार
तो एक एक क्षण में एक एक प्रकार से उनका रूप दिखता है अनुभव। पहले एक बार देख लिया हम लोग किसी रूप को देखते हैं साथ साथ में आगे बढ़ते हैं, किसी को देखकर मुख देख लिया बस तपन आगे बढ़ हमारी उत्कंठा तपन। किंतु कृष्ण का रूप ऐसा नित्य नवीन रूप में देख ये भाव के द्वारा होगा ऐसे नहीं, कंस उस रूप को देखकर के उसकी उत्कंठा देखने की नहीं होगी, भक्तों को मारने की उत्कंठा उसकी। जरासंध इत्यादि उस रूप को देखा किंतु चिंतन नहीं किया उसका, इसलिए कहते हैं अनुसवा नमम पति खनम नूतन एवं चतर्मी तत्व वक्ता अन्य देशीय देशियादि अभी स्त्री भी सुखे न अयम दृश्यतामिति। इसलिए हम लोग भी वहां जा करके अन्य देशिया भी
दूसरे देश की स्त्रियां भी सुख से देखें
और दूसरे भी देखें, कभी नहीं वहां पर जाकर के देखने से भी नहीं होगा, उनका जैसा भाव होना चाहिए भाव से नए नए रूप में वो प्रतिभागियों में देखे जाएंगे। क्योंकि दुरापह लक्ष्मी इत्यादि के लिए भी बड़े दुर्लभ है, लक्ष्मी को भी वैसे रूप नहीं दिखते। नारायण इत्यादि भी तो भगवान है, उनमें भी श्री है और सुंदरता है, होने से भी सर्वज्ञ सबने होने पर भी भगवान के अवतार में होने पर भी अंतिम सीमा अंतिम परिधि इस ब्रजन में अंदर है। इसलिए छ ऐश्वर्य समग्र तेजस्वी ज्ञान विज्ञान और वैराग्य कल्याण भी भगवान होंगे, वही स्वयं भगवान कृष्ण है। इन्हीं ये एकांत धाम ये रूप श्री जस ज्ञान वैराग्य सब इसी कृष्ण में ही संभव है। इस तरह से वो ये भाव आने पर ही कृष्ण का यह रूप देखा जा सकता है। राधा अब यहां पर समापन इस अध्याय को कर रहे हैं, यही तक भाव की गति, यही तक भाव की गति। अब इसके बाद में आएगा प्रेम की प्रलंब, अब तब ये आएगा मिलन का।
संशय